ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने सम्यक् दर्शन चरण गुण आय कुकर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिनवानी के ज्ञान के होत सत्व श्रद्धा चरण धारी केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रदान नमो जा पूजा सते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय के करि के क्षपणासार हो है प्रवचन सार सो समय सार अधिकार। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धि सार ग्रंथ की रचना की है, उसके आधार से हम प्रथमोपशम सम्यक से पूर्व होने वाली जो पांच लब्धि है उसका स्वरूप यहाँ देख रहे हैं। हमने देखा है जब जीव को तत्व की रुचि अपना स्वरूप जानने की जिज्ञासा होती है तो उस काल में उसके ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव फल देने की शक्ति किसकी? पाप कर्मों की। वो प्रति समय घटती चली जाती है, जितनी है उसका अनंतवा भाग रहते है, उसके आगे के समय में उससे अनंतवा भाग हो जाती है। इस तरह से जो उसका अनुभव घटकर हृदय में आता है उसको कहते हैं क्षोपशम लब्धि। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण वीर्यांतर आदि की जो शक्ति घटती है वैसे ही मोहनी कर्म की भी शक्ति हीन होती है। उसके फलस्वरूप जीव के जो कषाय भाव है वो मंदता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, उसी को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। कषाय मंद होते हैं इसलिए जो नया बंध होता है वो शुभ प्रकृतियों का होता है। तो ये जो क्षोपशम और विशुद्धि लब्धि है ऐसे जीव को, जिस जीव को तीव्र रुचि होती है उसको सच्चा उपदेश देने वाले ज्ञानी भी मिलते हैं और उसके उपदेश की भी प्राप्ति होती है, उसको तो देशना कहते हैं। परंतु जीव उसको सुनता है, समझता है, याद रखता है, उस पर बारंबार विचार करता है, ये जो ज्ञान की पर्याय है उसको देशना लब्धि कहते हैं। यहां तक की तो बात हमने देखी थी, अब इसके आगे क्या होता है? जो सुने हुए तत्व है जिस काल में जीव उस पर तत्व विचार करता है एकांत में बैठे बैठे। एकांत का अर्थ ऐसा नहीं कि अकेला जाके रूम में बैठे उसको एकांत नहीं कहते, भले भीड़ में भी बैठा हो वो विचार में खो जाता है तो उसको हम कहेंगे वो एकांत में विचार कर रहा है। जो सुने हुए तत्व है उस पर वो विचार करता है, तत्व विचार करता है, उस काल में कर्मों की कैसी कैसी अवस्थाएं होती है उसका यहाँ प्रायोग्य लब्धि के द्वारा हम स्वरूप देखने जा रहे हैं। प्रायोग्य लब्धि में बहुत सारी कर्म की अवस्थाएं होती है उसका हम छोटे इन्हें ये चार अगर उसके यहाँ बताने हैं प्रोसेसेस इन शॉर्ट बताने हैं तो क्या होता है? जो ऑलरेडी बंधे हुए सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उनमें क्या होता है और नया बंध है उनमें क्या होता है, ऐसे दो प्रकार से हमको देखना है। ऑलरेडी जो सत्ता में पड़े हैं हमने देखा था कि मोहनी की जो सत्ता है अनेक कूड़ा कोड़ी सागरों की है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की भी जैसे 30 कूड़ा कोड़ी सागर या थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, ज्यादा तो नहीं परंतु थोड़ी कम भी हो सकती है, परंतु मैक्सिमम 30 कूड़ा कोड़ी सागर। ये कर्म शुभ हो या अशुभ हो उनकी इतनी जो स्थिति सत्ता में पड़ी है, आयु को छोड़कर सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी का अर्थ क्या है? जैसे हमने अंतर मुहूर्त का अर्थ क्या देखा था, मुहूर्त से कम, वैसे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम और एक करोड़ सागर से ऊपर। यानी जो कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति हो जाती है, कितनी स्थिति में से, अनेक कोड़ा कोड़ी सागर थी उसमें से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होती है। किनकी? आयु के अलावा अन्य सातों ही कर्मों की स्थिति, भले वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, स्थिति तो सबकी घट जाती है। स्थिति की बात तो समझ गए। अब जो सत्ता में पूर्व में बंधे हुए कर्म पड़े थे और उनका अनुभाग भी देखा था, हमने देखा था ना, अनुभाग की अपेक्षा हमने स्पर्धकों के चार चार नाम देखे थे, आप थे ना पहले, देखा था। जैसे हमने घाती कर्मों में नाम देखे थे ऊपर से नीचे, शैल, अस्थि, दारू और लता। अब उनमें क्या होता है, वो शैल और अस्थि वाले जो तीव्र अनुभाग वाले स्पर्धक है उनका अनुभाग घट जाता है और लता और दारू इतना रह जाता है। अघाती कर्मों में हमने देखा था अशुभ कर्म है उनके चार प्रकार के स्पर्धक ऊपर से नीचे, उनके नाम क्या है, हलाहल, विष, कांजीर और नीम। तो हलाहल और विष टाइप के जो अति तीव्र अनुभाग वाले पाप कर्म है उनका अनुभाग घटकर मंद होता है, नीचे के दो रूप हो जाता है। सहज ऐसे वस्तु व्यवस्था है कि तत्व विचार के काल में ये सारी अपने आप बातें होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि पहले संयोग को सुधारो और बाद में स्वाध्याय करो, है ना? अब यहां तो कहते तत्व विचार करने लगे तो भी ये सारे इतनी अप्रशस्त पाप कर्मों का अनुभव घटता है। पाप कर्मों का अनुभव घटेगा तो उसका फल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यहां तो पुण्य कर्मों का अनुभव भी बढ़ने वाला है, वो अभी आएगी बात। अभी तो हम क्या देख रहे हैं, स्थिति घट गई किसकी, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की, और अनुभाग भी घट गया। ये कौन से प्रोसेस के द्वारा घटता है? तो यहाँ दो नाम ऊपर लिखे हैं, स्थिति कांडक घात और दूसरा है अनुभाग कांडक घात। ये तो सत्ता की बात हुई। अब जो नया बंध होता है उसमें क्या होता है? तो जो नया बंध होता है वह भी कम स्थिति वाला बनता है। जितनी सत्ता की स्थिति घट गई है उससे भी छोटा अंत कोड़ा कोड़ी सागर इतनी स्थिति वाला बंध होता है। और अनुभाग कैसे बनता है? बंधने वाला अनुभाग अभी नीचे के दो वाला ही बंधेगा। घाती कर्मों में लता और दारू वाला बंधेगा, अघाती कर्मों के पाप प्रकृतियों में नीम और कांजीर वाला बंधेगा, और शुभ प्रकृतियों में क्या होगा, चारों प्रकार का बढ़ता हुआ अनुभाग बंधेगा। फायदा ही फायदा है कि नहीं?
टेम्पररी फायदा है।
टेम्पररी वो फायदा में उसको फायदा नहीं गिनते हैं। जो सच्चा तत्व निर्णय कर रहा है उसको अभी पुण्य के फल में कोई रुचि नहीं रहती, फिर भी उसके सहज में पुण्य का ये जो फल है वो बढ़ता चला जाता है। उसको रुचि तो छूट गई है ना, पुण्य करने की रुचि है ना पुण्य को फल को भोगने की रुचि है, फिर भी सहज ऐसी बात होती है कि उसके तो पुण्य परिणाम भी होते हैं, क्योंकि तत्व विचार ये पुण्य परिणाम है और पूर्व में बंधे हुए पुण्य में अनुभाग अपने आप बढ़ता है, पाप का अनुभाग अपने आप घटता है। अब ये क्या है उसको देखेंगे। ये तो स्थिति बंधा पसरण, स्थिति बंध का अपसरण होना यानी घटते चले जाना। विशिष्ट स्थिति बंध रही है, कम बंध रही है पहले से। स्थिति बंध का ऐसा नियम है कि उतनी ही स्थिति लगातार अंतर्मुहूर्त तक बनती है, फिर क्या होगा, फिर उसमें कटौती होगी, फिर लगातार वो कम हुआ बंध उतना लगातार अंतर्मुहूर्त चलेगा, फिर उसमें कटौती होगी, फिर लगातार उतना बंध होगा, फिर उसमें कटौती होगी। देखो यहां दिखाया है,
ऊपर ऊपर
देखो, ये इतना मान लेते हैं, अभी हम नीचे से ऐसा नहीं दिखा रहे परंतु इतना यहाँ स्थिति बंद हो रहा था, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय से अंतर मुहूर्त तक इतना ही स्थिति बंद हुआ, फिर एक समय में उसमें ड्रॉप हो गया, फिर लगातार एक समय दो समय ऐसे अंतर्मुहूर्त तक उतना स्थिति बंद हुआ, फिर उसमें ड्रॉप हो गया, फिर यहाँ लगातार ये कम स्थिति हुई, वो इतनी बनती हर समय इतनी 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 बंधेगी, पर यहाँ तक बंधेगी, फिर उसमें कटौती होगी। इस तरह से एक एक अंतर्मुहूर्त में स्थिति बंध घटता चला जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्थिति बंध का अपसरण होना। ये स्थिति बंध का अपसरण हम अभी थोड़ा पुस्तक में पढ़ेंगे, 98 पृष्ठ हिंदी में और गुजराती में 95 होना चाहिए। लब्धि सार ग्रंथ में स्थिति बंधापसरण का वर्णन इस प्रकार है, मिला? हाँ, लास्ट पैराग्राफ 95 पृष्ठ पर। स्थिति बंध कषाय के अनुसार होता है, ये हमने पहले देखा था। चार प्रकार के जो बंध है, प्रदेश बंध और प्रकृति बंध, योग के अनुसार होता है, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय के अनुसार होता है। इसलिए मिथ्यात्व और कषाय हीन होने से, मंद होने से स्थिति बंध घटता है, नया बंध कम स्थिति वाला होता है, क्योंकि कषाय लगातार मंदता की ओर जा रहे हैं, तो स्थिति बंध भी घटता चला जा रहा है। घटने को अपसरण कहते हैं, स्थिति बंध घटने को स्थिति बंधापसरण कहते हैं। स्थिति बंध का अपसरण, स्थिति बंध का घटना, ये शब्द कैसा तैयार हुआ है उसको अगर ख्याल में लेते हैं तो ये बड़े बड़े शब्दों का डर नहीं लगेगा, है ना? हाँ। प्रायोग्य लब्धि में स्थिति बंध क्रमशः घटता जाता है, जितनी स्थिति कम बंधी अर्थात स्थिति बंध में जितनी घट हुई उतना तो स्थिति बंधापसरण हुआ, और घटने पर जितने प्रमाण में स्थिति बंधेगी वह तो स्थिति बंध शेष रहा, यानी उतने का स्थिति बंध होता रहा, फिर उसमें और कटौती होगी। इसको हम उदाहरण लेके दृष्टांत लेके समझेंगे अभी थोड़ी देर में। जितना स्थिति बंध रहा उतना स्थिति बंध अंतर्मुहूर्त काल तक समान प्रमाण में होता रहता है। अभी हमने देखा था ना, कम हुआ स्थिति बंध, परंतु उतना का उतना लगातार अंतर्मुहूर्त काल तक चलेगा, फिर उसमें कषाय में कम हो गई, फिर उसमें अंतर्मुहूर्त काल तक उतना ही स्थिति बंध होगा। इस काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं, इसके पश्चात दोबारा स्थिति बंधापसरण होता है। अब लब्धिसार में इसको दृष्टांत देकर समझाए, उसको हम देखेंगे। जैसे पहले 100,000 वर्ष का स्थिति बंध होता था, समझाने के लिए 100,000 कहा है, यह हमने देखा था। अभी तो अंतक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध हो रहा है यहाँ पर, फिर भी उसमें कटौती होती चली जाएगी। तो जो ये समझाने के लिए हमें जो फिगर्स आसानी से समझ में आ सके ऐसे संख्या लेकर समझा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 100,000 वर्ष का स्थिति बंध होता था, उसमें 1,000 वर्ष प्रमाण स्थिति बंधापसरण हुआ, कटौती कितनी हुई 1,000 वर्ष की, कितने रह गए 99,000। तब 99,000 वर्ष जितना स्थिति बंध रहा, स्थिति बंधापसरण काल के, ये स्थिति बंधापसरण काल किसको कहा, अभी लगातार 99,000 इतना बंद होता रहेगा, कितने काल तक, अंतर्मुहूर्त तक। तो पहले समय में दूसरे समय में इस तरह अंतर्मुहूर्त काल तक इतना ही समान स्थिति बंध होता रहेगा, हर समय इतना इतना होगा, 99,000 99,000 99,000। उसके बाद क्या होगा, फिर उसमें कटौती होगी। अब 800 वर्ष प्रमाण दूसरा स्थिति बंधापसरण हुआ, फिर स्थिति बंध में कटौती हुई, पहले 1,000 वर्ष की हुई थी, अब 800 वर्ष की हुई, अब कितना बाकी रहा 98,200, इतना स्थिति बंध रहा। अंतर्मुहूर्त काल तक इतना समान स्थिति बंध होता रहेगा, फिर तीसरी बार स्थिति बंधापसरण होगा। दृष्टांत में 1,000 वर्ष 800 वर्ष का काल्पनिक प्रमाण बताया है, प्रत्यक्ष में एक्चुअल में पल्य के संख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति बंधापसरण होता है, एक पल्य में असंख्यात अबज वर्ष होते हैं, तो उसका कुछ संख्यातवा भाग यानी मान लो ना असंख्यात वर्ष, इतनी कटौती होती है स्थिति बंध में। इस प्रकार संख्यात यानी 1,000,000,000,000 बार स्थिति बंधापसरण होने पर क्या कहते हैं? एक स्थिति बंधापसरण होने के लिए एक अंतर्मुर्त, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे करोड़ों बार हो जाएगा, तब जाके पृथक्त्व सौ सागर। पृथक्त्व ने अभी यहां पृथक्त्व की वैल्यू सात या आठ, सात सौ सागर, इतना जब कटौती हो जाएगी। एक एक बार में कितना हुआ? पल्ले का संख्यात्वा भाग, संख्यात्वा हम मान लेते पल्ले का चौथा भाग। तो जब चार बार स्थिति बंधापसरण होगी तो एक पल्ले घटा, दस कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। और 700 सागर के लिए कितनी बार स्थिति बंधापसरण होगा और हरेक के लिए अंतर्मूर्त, यानी कितने अंतर्मूर्त हो गए? कल बताया था ना, छोटे छोटे अंतर्मूर्त भी इसमें बहुत होंगे। देखो अभी यहाँ जो बात है, यहाँ लिखी नहीं है, ये जो यहाँ हमने देखा था कटौती हुई यहाँ, फिर स्थिति बंधापसरण, ये अंतर्मूर्त तक उतना ही स्थिति बंध हुआ, फिर अपसरण हुआ, फिर उतना ही हुआ, फिर अपसरण हुआ, फिर उतना ही रहा। तो यहां से यहां तक, यहां तो हमने चार ही बार दिखाया, तो हमने क्या माना यहां कितनी स्थिति कट हो गई? 700 से 800, हम 700 लेंगे अभी समझे, 700 सागर इतनी स्थिति बंध में घटौती हुई, तो क्या होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहां कहते हैं जब 700 से 800 सागर जितनी घट होती है तब पहली बार प्रकृति बंधापसरण होता है। प्रदेश बंधापसरण नहीं कहा, क्या कहा? प्रकृति बंध का अपसरण होता है। अब तक तो जीव मिथ्या दृष्टि ही है, तो मिथ्या दृष्टि के यथा योग्य सभी प्रकृति बंधेगी। आपको मालूम है मिथ्या दृष्टि को कौन सी प्रकृति नहीं बनती है? सम्यक प्रकृति तो बंध योग्य है ही नहीं है, बरोबर है? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है, और ना ही आहारक संबंधी प्रकृतियां बनती है। अन्य तो प्रकृति उसके बन सकती है, कोई भी बंधेगी ना। अभी मिथ्या दृष्टि है तो नरक गति भी बंधेगी, तिरंज गति भी बंधेगी, और नरकायु बांधेगी, कुछ ना कुछ बांधेगी। तो उनमें से अब कितने ही प्रकृतियों का बंध यहां पर रुक जाएगा, वो कितने ही प्रकृतियां कौन कौन सी है उसकी बात बताएंगे। तो अभी यह पहला स्थान आया, यहां लिखा है ना, देखिए 700 या 800 यहां से लेकर यहां तक 700 से 800 सागर की स्थिति कम हुई बंधने वाली, तब यहां प्रकृति बंधापसरण का पहला स्थान आया। पहला स्थान आया इसका अर्थ है यहां कोई विशिष्ट एक प्रकृति बंधना रुक गई। उसके बाद क्या होगा? फिर वो स्थिति बंधापसरण चलता रहेगा, फिर यहां 700-800 और सागर कम हो जाएंगे, तब प्रकृति बंध का दूसरा स्थान आ जाएगा। ये स्थिति बंधापसरण चालू ही है और 700-800 सागर की कटौती हो जाएगी, तब प्रकृति बंधापसरण का तीसरा स्थान आएगा। ऐसे प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान होते हैं, और प्रकृतियां तो 46 के बराबर कम होगी बंधने की।
मगर उस स्थान पे क्या होता है प्रकृति?
इस स्थान पर विशिष्ट प्रकृतियों का बंध जो अब तक होता था वो अभी मंद कषाय है, तत्व विचार के काल में ऐसी पुण्य बंध रहा है, तो उसके विशिष्ट पाप प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। पहले इन शब्दों का अर्थ लेना है हमको। अभी क्या हो रहा था? स्थिति बंध घट रहा था, विशिष्ट स्थिति घटने पर एक एक प्रकृति का बंध क्रम से रुकता चला जाएगा। पहले नरकायु का बंध हो रहा था, इसके पूर्व अभी नहीं होगा, तो हम कहेंगे पहले स्थान पर क्या होता है, वहां तक नरकायु बांधने का चांस था, अभी नहीं बंधेगी। आगे और चला, दूसरे स्थान पर आया, वहां क्या होगा? अब तिर्यंचायु नहीं बंधेगी। और आगे चला, मनुष्यायु भी रुक गया। आगे चला, देवायु का बंध भी रुक गया। आप कहेंगे सभी प्रकार की आयु बंध रुक गया, अभी क्या करेगा वो जीव? ये लब्धिया कितने काल तक रहती है? अंतर्मूर्त काल तक ये बंध रुकने वाला है, कायम के लिए नहीं। अब मान लेते इसमें से कोई करण लब्धि प्राप्त करेगा और सम्यक दृष्टि भी होगा, तो उपशम सम्यक तो काल पूरा होने तक ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी। सम्यक दर्शन होने पर कोई आयु बांधेगा कि नहीं? हाँ, सम्यक दृष्टि है तो अभी वो देव आयु बांधेगा। अब देव सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य आयु बांधेगा, पर तो उसके रूल्स तो हम बाद में देखेंगे। अब इस काल में, तत्व विचार के काल में क्या क्या होगा उसकी बात चल रही है यहाँ पर। ऐसा सहज नियम है, अत्यंत तीव्र परिणाम में, संकलेश परिणाम में आयु नहीं बनती, अत्यंत मंद परिणाम में, विशुद्धि में भी आयु नहीं बनती। तो अभी क्या हो रहा है उसको हम देखेंगे। देखिए देखिए, पृथक्त्व का अर्थ यहाँ पर 700-800 लेना है, अन्यत्र पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग होता है। सामान्य से बिटवीन 3-9 ऐसे अर्थ किया जाता है, परंतु हर जगह उसका अपना अपना अलग अर्थ होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह स्थितिबंध में क्रमशः घटने को स्थितिबंधापसरण कहते हैं, उसी तरह विवक्षित कर्म प्रकृतियां, विवक्षित यानी पर्टिकुलर कर्म प्रकृतियों का बंध क्रमशः घटता जाता है, बंध होना रुकता है, इसे प्रकृति बंध अपसरण कहते हैं। अपसरण यानी घटना, किसका? प्रकृति बंध का घटना। एक एक स्थिति बंधापसरण द्वारा, यानी एक बार स्थिति बंधापसरण होता है तो पल्ल्य के संख्यात्वे भाग प्रमाण स्थिति बंध में घट होती है। हमने देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ष या 800 वर्ष, ऐसे संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात, संख्यात 1000 यानी वो करोड़ों भी हो सकते हैं, कुल मिलाकर 700 से 800 सागर की घट होती है, तब प्रकृति बंधापसरण का एक स्थान आता है, उसमें विवक्षित प्रकृति का बंध रुक जाता है। ये कौन सी प्रकृति का बंध रुकेगा और कौन से स्थान पर कौन सी प्रकृति का बंध अभी नहीं होगा, उसकी लिस्ट हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे। उसके पश्चात फिर से संख्यात 1000 स्थिति बंधापसरण द्वारा जब स्थितिबंध दोबारा 700 से 800 सागर जितना घट जाता है, तब प्रकृति बंधापसरण का दूसरा स्थान आता है, इसमें अन्य विवक्षित कर्म प्रकृति का बंध रुकता है, कोई दूसरी एक कर्म प्रकृति पर्टिकुलर। कौन सी है उसके नाम तो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले प्रोसेस क्या है उसको समझेंगे। इस प्रकार संख्यात 1000 स्थितिबंधापसरण होने के पश्चात तीसरी बार प्रकृति बंधापसरण होता है। इसी क्रम से प्रायोग्य लब्धि में प्रकृति बंधापसरण के कुल 34 स्थान होते हैं। इन 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। आप कहेंगे 34 तो स्थान है, 46 कैसे हो गए? तो कहीं कहीं एक से ज्यादा प्रकृतियां भी बंधना रुक जाती है। बंध के रुकने को बंध की विच्छित्ति भी कहते हैं। फिर भी प्रकृति बंधापसरण और बंध की विच्छित्ति दोनों भिन्न बातें हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, जो आपने शायद सुना होगा, जब जीव सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक तो प्राप्त करता है, चौथे गुणस्थान में जाता है, तो जो प्रकृतियां मात्र पहले गुणस्थान में ही बन सकती है, ऊपर नहीं बनती है, तो सम्यक दर्शन होने के बाद हम कहेंगे वो पहले गुणस्थान के बंध की विच्छित्ति इतने प्रकृतियों की है, 16 की है। वो 16 प्रकृति एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही बन सकती है, ऊपर नहीं, पहले से चौथे में गया है ना। तो जो प्रकृतियां मात्र पहले दूसरे गुणस्थान में ही बनती है, ऊपर नहीं, तो उसको कहेंगे दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति। तो पहले की 16 और दूसरे की 25 मिलाकर 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, जो मिथ्यात्व अवस्था में होता था परंतु अभी सम्यक दर्शन होने पर नहीं होगा, उसको कहते हैं बंध की विच्छित्ति। अब यहां जीव किसमें है? प्रायोग्य लब्धि में है। ये जो अभी हम 46 प्रकृतियां देखेंगे, उनका बंध अंतर्मूर्त के लिए रुका है। यदि यह जीव करण लब्धि में जाकर सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो इसमें से कितना ही बंध रुका ही रहेगा। अब ये जो 46 प्रकृति है, इसमें ना मिथ्यात्व का नाम है ना अनंतानुबंधी का, हम देखेंगे अभी आगे चलकर, यानी उसके मिथ्यात्व का बंध नहीं रुका है। अब प्रायोगिक लब्धि तक आया है, तत्व विचार में थोड़ा लग गया है, फिर उसमें से छूट जाता है, अन्य कार्यों में लग जाता है, तो उसकी प्रायोगिक लब्धि, सभी लब्धियां नष्ट हो जाती है। तब उसके जो रुका हुआ बंध है उसमें से सभी बंध फिर शुरू हो जाता है। तत्व विचार के काल में ये है, और अभवियों को भी प्रायोगिक उपलब्धि हो सकती है, उनके भी ये 34 के 34 स्थान हो सकते हैं, उनकी भी इतनी प्रकृतियां अंतर्मूर्त के लिए रुक जाती है परंतु फिर दोबारा बनती है, इसलिए इसको बंध विच्छित्ति नहीं कहते, क्योंकि ये मात्र उसने काल तक की बात है, टेम्पररी है। यदि वह जीव सम्यक तो प्राप्त करेगा तो ही वो ऊपर के गुणस्थान में जाता है, तो नीचे का वो बंध कायम के लिए रुकता है उसका, फिर दोबारा मिथ्यात्व में आएगा तो फिर दोबारा बंधेगा। ख्याल में आता है? अभी जो है वो प्रायोगिक लब्धि के काल में क्या हो रहा है उसकी चर्चा है। अब ये जो हम यहाँ 34 स्थान देखेंगे और उनमें जो प्रकृतियां देखेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे तो जरा ख्याल आएगा, तो हम इसमें से पढ़कर फिर बताएंगे आगे के पृष्ठ पर। ये जो 34 स्थान है उनकी संख्या दी है 1, 2, 3, 4, और उस स्थान पर कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुकता है उसको भी यहाँ लिखा है, पढ़ेंगे केवल इसको, और जहां कोई बात बीच में आती तो उसको भी देखेंगे। पहले स्थान पर नरकायु का बंध रुक जाता है, प्रकृति बंधापसरण के दूसरे स्थान पर तिर्यंचायु का बंध अब तक होता था अब नहीं होगा, तीसरे स्थान पर मनुष्यायु और चौथे स्थान पर नरकायु, सॉरी देवायु, पहले नरकायु गए थे, यानी ये चारों ही आयु कर्म का जो बंध अभी रुक गया है वो प्रथमोपशम समय तो इसके बाद होगा अगर, तो तब तक उसका बंध रुकेगा। यदि प्रायोगिक लब्धि में ही उसके परिणाम बदल गए तो फिर उसके बंध फिर चालू हो जाएगा। अब इसमें से कितने ही प्रकृतियों का बंध,
चार आयु बंद हो जाते हैं तो उसी टाइम उसकी डेथ तो होती ही नहीं।
हाँ, चारों आयु का बंध रुक गया है,
रुक गया है
तो यदि उसने पूर्व में आयु का बंध किया हो तो मरण तो हो ही सकता है।
पूर्व आयु का बंध, हाँ, नहीं किया होता तो नहीं हो सकता
ना। देखो मरण नहीं होता ये औपशमिक सम्यक्त के काल में, और करण लब्धि में मरण नहीं होता क्योंकि करण लब्धि में गया है तो वो सम्यक्त प्राप्त करके ही रहेंगे। प्रथमोपशम काल सम्यक्त का जो काल है पूरा सम्यक्त प्राप्त करके वो अंतर्मूर्त पूरा होने तक किसी भी जीव का मरण हो नहीं सकता प्रथमोपशम के काल में, ऐसा नियम है। कहां कहां मरण नहीं होता जीवों का ये सारे नियम है, उसकी बहुत बड़ी जंत्री है,
लिस्ट
है। तो अभी तो हम क्या समझे, नया बंध नहीं हो रहा है, पुराना बंधा हुआ उसका मरण अगर काल हुआ तो प्रायोगिक लब्धि के काल में भी मरण में तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है, उस काल में मरेगा तो देव में जाएगा क्योंकि अभी शुभ परिणाम है। पर हो सकता है नारकी भी प्रायोगिक लब्धि में मरेगा तो कहाँ आएगा, मनुष्य में आएगा, डिपेंड्स कौन सा जीव कहाँ का कहाँ जाएगा। अब हम यहाँ ये स्थान देखेंगे और उसके कौन कौन सी प्रकृति है उसको भी देखेंगे, यानी अभी तो आयु का बंध रुक गया है। अब मान लेते कोई सम्यक दृष्टि हो गया इसके पश्चात और आयु का बंध भी किया नहीं है तो क्या होगा, मनुष्य सम्यक दृष्टि होगा या तिर्यंच सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होने के पश्चात वो अभी देवायु का ही बंध करेगा अन्य किसी भी आयु का नहीं, सम्यक तो होने के बाद। देव सम्यक दृष्टि है और नारकी सम्यक दृष्टि है, वो किसका बंध करेंगे, मनुष्य आयु का ही बंध करेंगे अन्य नहीं। और इनके पहले कोई आयु बंधी हो तो उस प्रमाण में अभी उसके अलग अलग नियम है उसको देखेंगे हम आगे बढ़ते। देखो ये चार स्थान हमने देखे, दो स्थान के बीच में कितनी स्थिति घटती है, 700 से 800 सागर, रैपिडली कितना कम हो रहे हैं ना बंध सब। पांचवे स्थान में नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, उसके बाद छठे स्थान पर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण, ये जो पहले किसी जीव को बंध सकते थे अभी परिणाम विशुद्ध हो गए तो ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी, यानी ये ग्रुप का यानी ये संयोग रूप ये ग्रुप नहीं बंधेगा संयोग रूप से। सातवें स्थान पर सूक्ष्म अपर्याप्त और प्रत्येक, साधारण का अर्थ होता है निगोद, छठे में सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण देखा, सातवें में सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक देखा, आठवें में बादर अपर्याप्त साधारण और नौवें में बादर अपर्याप्त प्रत्येक, ये सभी अपर्याप्त ले रहे हैं एक इंद्रियों के सूक्ष्म बादर लिए, साधारण प्रत्येक लिए, द्विंद्रिय अपर्याप्त, इंद्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त। अब इसके बाद पर्याप्त के साथ वाले सूक्ष्म पर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त, प्रत्येक, बादर पर्याप्त, साधारण और बादर पर्याप्त, प्रत्येक। अभी यहां तक ही एकेंद्रिय का बंध है, इसके आगे एकेंद्रिय संबंधी बंध नहीं है। तो उसकी जो एकेंद्रिय संबंधी अन्य प्रकृति होती है उसको भी यहां पर लिया, एकेंद्रिय स्थावर आतप। ये ध्यान में रखने की बात नहीं है, अभी हम समझने की बात मुख्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द्विंद्रिय पर्याप्त, पहले हमने अपर्याप्त देखे थे, वहां पर्याप्त का बंध हो सकता था, अब इस पोजीशन पर आकर पर्याप्तों के भी बंध होते हैं रूप से, यानी द्विंद्रिय का पर्याप्त, तीन्द्रिय पर्याप्त, चतुर्द्रिय पर्याप्त, असंगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त, संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त को नहीं लिया है, संगी पंचेन्द्रिय संबंधी बंध होता रहेगा। अब गतियों में, पहले हमने नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी को देखा था पांचवें स्थान पर, अब यहाँ तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूरी और उसी के साथ उद्योत जो तिर्यंच गति के साथ बनता है, और उसके पश्चात नीच गोत्र। अब आगे
उद्योत का क्या?
उद्योत जो है ना, ये जो शरीर में जो ये जुगनु जैसे होते हैं, या ये चंद्र, हाँ अज्ञा, चंद्र बिंब जो विमान है उसके पृथ्वी का एक जीव, संगी पंचेन्द्रियों तक के तिर्यंचों में उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाता है। ये फिश भी होते ना, कोई ऐसे चमकीली, फॉस्फरस वाले, ये अपना हुआ था यहाँ 31 पेज, आपका गुजराती उसमें कम होगा, 3 पेज कम करना उसमें,
29
उद्योत नाम कर्म का वहाँ लिया लिखा है, सभी नाम कर्मों के वहाँ,
आप नहीं थे ना, ये हो गया सर,
ये सभी
बोलो बोलो
उत्तर प्रकृतियों की वहाँ बताई है। देखो, जिस कर्म के उदय में शरीर में उद्योत अर्थात उष्णता रहित प्रभाव उत्पन्न होती है, और उसके उदाहरण है चंद्रबिंब के पृथ्वी का एक जीव, चंद्रमा जो हम कहते हैं, या जो कोई वो पृथ्वी का एक खंड है ना पृथ्वी के, और वहां के पृथ्वी का एक जीवों का जो शरीर है उसमें ये उद्योत नाम कर्म के उदय से विशिष्ट वहां प्रभाव पाई जाती है। अभी यहाँ हम आते हैं, देखिए 25वां जो पोजीशन है प्रकृति बंधापसरण का, 25वां स्थान मिला ना,
99वें
अप्रशस्त विहार गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, इन इतनी एक साथ इतनी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, इन सब के अर्थ भी आपको पीछे मिलेंगे। विहाय गति यानी जो चाल है जीव की, अप्रशस्त यानी अशुभ चाल, दुर्भग यानी जीव इसके प्रति प्रीति नहीं करता, ऐसा जो नाम कर्म, ये सारे नाम कर्मों के नाम है, दुस्वर यानी जिसके कारण स्वर जो है वो अच्छा नहीं, उनके ना सुरीला नहीं है, और अनादेय यानी कांति रहित शरीर वाले जो नाम कर्म है उसके ये प्रकृतियां इसके नहीं बनती यहां तक। अब यहां संस्थानों की और सहननों की बात होगी, छह संस्थान है, छह सहनन है, तो उसमें छठा संस्थान और छठा सहनन यहां तक बनता था, अब इसके आगे नहीं बंधेगा। ये उदय की बातें नहीं है, बंध की बातें चल रही यहाँ पर।
हाँ,
अब 27वें पॉइंट पर नपुसक वेद, 28वें वामन संस्थान और कीलित सहनन, ये 5वां संस्थान है और 5वां सहनन है। अभी अभी तो नाम ही पढ़ने ना, क्योंकि वो पहले प्रकृति हमने डिटेल में ली थी। 29वें पॉइंट पर कुब्जक संस्थान और अर्धनाराज सहनन, ये चौथे नंबर का संस्थान और सहनन है। 30वां जो स्थान है उसमें स्त्री वेद का बंध रुक जाता है, देखो अभी नपुसक वेद का पहले ही रुक गया था, ये स्त्री वेद का बंध की बात है। देखो, कोई स्त्री भी सम्यक दृष्टि हो जाएगी, सम्यक तो होने के पश्चात ना उसको नया के बंध की बात चले, स्त्री वेद का उदय तो उसका चलेगा, बंध नहीं होगा उसको, नया बंध तो उसको पुरुष वेद का ही होगा। क्योंकि हमने देखा ना स्त्रियां भी समय दृष्टि है तो मरकर वो पुरुष होकर ही जन्मती है और पुरुष होकर ही समयत्व के साथ वो आगे पुरुष पर्याय में जाकर फिर उनके मोक्ष तक का पुरुषार्थ होता है। अब 31वें पॉइंट पर स्वाति संस्थान और नाराज सहनन, ये तीसरे नंबर का संस्थान और सहनन है। 32वें पॉइंट पर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान और वज्र नाराज सहनन, ये दो नंबर का संस्थान और सहनन है। 33वें पॉइंट पर मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्र ऋषभ नाराज सहनन, सहनन को लिया संस्थान को नहीं लिया यहाँ पर। देखो पहला सहनन तो लिया परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता, उसका बंध आठवें गुणस्थान तक होता है क्योंकि वो देवगति के साथ बनता है ना। यहाँ तो मनुष्य गति बंधना रुक गई है परंतु देवगति का बंधन रुका नहीं है। तो जो देवगति बांधता है उसके साथ हमने पहले देखा था विशिष्ट गति बांधता है उसका पैकेज होता है, उसके साथ कौन कौन सी प्रकृतियां बंधेगी वो निश्चित होता है। इसलिए यहाँ वो समचतुरस्र संस्थान का बंध रुका नहीं है। तो देवगति के साथ सहनन का बंध होता है कि नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि देवों की हड्डियां वगैरह नहीं होती है, उनके सप्त धातु रहित शरीर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अंतिम स्थान पर अस्थिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयशस्वी कीर्ति, अरति और शोक, यानी ये सभी इतनी जो हमने टोटल देखी है इनकी संख्या है 46। इतने प्रकृतियों का बंध यहाँ रुक जाता है। तुम कहोगी चलो बहुत अच्छी बात बताई, अब हम प्रायोगिक लब्धि में ही रहेंगे, चलेगा कि नहीं नलिनी बहन? तो हमारे इन प्रकृतियों का बंद होना रुक जाएगा और हमारा संवर प्रारंभ होगा। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि सात तत्व के प्रकरण में हमने सीखा था कि बंद का रुक जाना संवर है, उससे आनी है ना पकड़ना चाहते कहते ना थोड़ा अभ्यास किया ना तो अपने को ऐसा समझना लगते कि देखो मैं कितना सियाना हूँ। तो क्या गया, बंद रुकता है ना तो हम प्रायोगिक लब्धि में रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, बंद का रुक जाना उसको क्या कहा था हमने? संवर। तो देखो हमारा संवर हुआ कि नहीं हुआ। ये प्रायोगिक लब्धि वाला अभी कौन से गुणस्थान में है भाई? मिथ्यात्व में ही है क्योंकि अभी समय तो होने के बीच में करण लब्धि अभी नहीं हुई उसकी। तो मिथ्यात्व में संवर शुरू होता है कि नहीं होता? निर्णय करना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि को संवर होता है कि नहीं होता जगदीश भाई? नहीं होगा क्योंकि अभी शुद्धि की उत्पत्ति नहीं हुई, वितरागता की प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो मिथ्या दृष्टि को संवर नहीं होता। अब व्रत करने लग जाए तो भी पुण्य से बंद होगा, संवर होगा कि नहीं होगा? तत्व विचार से संवर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तत्व विचार है, अभी समय दर्शन नहीं हुआ है, ख्याल है ना? तत्व विचार से भी पुण्य बन रहा है उसको, उससे संवर होगा नहीं। यानी अभी उसके बंध जो अटका है वो पुण्य प्रकृति का बंध रुका है, सॉरी पाप प्रकृति का बंध रुका है, पुण्य प्रकृति का बंध हो रहा है, उसको संवर नहीं कहते। संवर कब होगा? जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का रुक जाएगा बंध, तब संवर प्रारंभ होगा। क्योंकि ये तो प्रकृति अंतर्मूर्त के लिए रुकी है, फिर बंधने वाली है। देखो ऐसी जो गलत मान्यता है ना, वो ऐसे प्रश्न बेटियों के मुंह में रखे, ख्याल है ना? हाँ, बेटियों ऐसी भूल कभी मत करना, यदि पाप प्रकृति का बंध नहीं हुआ और पुण्य प्रकृति का बंध हुआ इसलिए संवर मानोगी, तब जब पुण्य प्रकृति के बदले पाप प्रकृति बंधेगी तब पुण्य प्रकृति का भी संवर मानना पड़ेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? न्याय से बात लेनी चाहिए ना हमें। यहाँ तो केवल आघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध केवल अंतर्मूर्त के लिए रुक गया है। हमने इतनी पूरी सारी लिस्ट देखी है उसमें कितने घाती कर्म बंधने रुक गए हैं। ज्ञानावरण का नाम आया उसमें, दर्शनावरण का नहीं आया, मोनी का एक भी नहीं आया और अंतराय का भी नहीं आया। अघाती कर्म में जो पुण्य पाप के भेद है उसमें से कुछ नाम आए, सब नाम भी नहीं आए। तो कुछ पाप प्रकृतियों का बंध रुक गया है और ऐसे प्रायोग्य लब्धि के परिणाम और प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान तो अभवियों के भी पाए जाते हैं, जिनको तीन काल में संयुक्त होने वाला नहीं। तो इतना सारा तो उसको भी संवर होता है कि नहीं होता? अभवियों को होगा संवर? नहीं होगा। भव्यों को भी जब तक प्रायोगिक लब्धि में है तब तक संवर है ही नहीं उनके भी। तो क्या तुम मानोगे कि अभव्य जीवों को भी संवर होता है? घाती कर्म तो समस्त यानी सभी के सभी पाप रूप ही है, वे तो निरंतर बनते ही है। निरंतर का अर्थ अंतर छूटे बिना। कब से बन रहे? अनादिकाल से। और कब तक बंधेंगे? जब तक उनके बंध की विच्छित्ति नहीं होती जो ऊपर के गुणस्थानों में होती है। जब पहले समय इसमें वो समय दर्शन प्राप्त करेगा तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध रुकेगा, उसके पहले नहीं। फिर यथा योग्य जितने ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा उतने उतने और प्रकृतियों का बंध रुकता चला जाएगा। सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म तो मिथ्यात्व है। पाप और का पाप कर्म में क्या अंतर है? हाँ भाई आप बताएं, पाप और पाप कर्म में क्या अंतर है? कौन बताना चाहता है?
पाप कर्म हो गया तो बंद हो गया पाप का।
पाप तो नहीं, पाप क्या है और पाप कर्म क्या है, दोनों का नाम मिथ्यात्व है।
पाप क्रिया है और पाप कर्म बंद है।
पाप जीव का भाव है और पाप कर्म कर्म है। तो जीव का परिणाम क्या है? मिथ्यात्व। यहाँ बात हुई ना, वो अभी कल कितने प्रकार के मिथ्यात्व देखे? पांच प्रकार के देखे थे। उनको क्या कहेंगे? मिथ्यात्व भाव जीव का परिणाम। और वहां कर्मों में देखेंगे तो क्या कहेंगे उसको? मिथ्यात्व कर्म। तो यहाँ कहते हैं जीव के भावों में भी, जीव के परिणामों में पाप कितने प्रकार के हम पूछते हैं तो हम कौन कौन से जवाब क्या देते, बच्चों को भी सिखाते। पाप कौन कौन से है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इन पांच पापों का बाप कौन है? मिथ्यात्व, जिसके कारण जीव पाप करता है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो मिथ्यात्व है। और सभी कर्मों में सबसे बड़ा पाप कर्म कौन सा है? ये हमने देखा ना, सभी घाती कर्म पाप रूप है। उन सभी घाती कर्मों में सबसे बड़ा पाप कर्म कौन सा है? मिथ्यात्व कर्म है। मोहनीय में भी मिथ्यात्व कर्म, तो मिथ्यात्व कर्म है। उसका बंध और उदय भी यहाँ चल ही रहा है। जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान है, पहले गुणस्थान है, मिथ्यात्व का बंध भी होता है और उदय भी होता है। जहां तक उदय है वहीं तक बंध है। मिथ्यात्व का उदय भी मिट जाएगा तो मिथ्यात्व परिणाम भी नहीं होगा और नया मिथ्यात्व का बंध भी नहीं होगा। तीनों एक समय में होते हैं। कौन कौन से? पुराने मिथ्यात्व का उदय, यहाँ जीव का मिथ्यात्व परिणाम और नया मिथ्यात्व कर्म का बंध। अभी ये श्रृंखला तोड़नी है तो क्या करना पड़ेगा?
बंध को
घटाना पड़ेगा। पर जब मिथ्यात्व का जीव मिथ्यात्व करता है यहाँ बंध होता ही है, तो अभी क्या करना
पड़ेगा?
तत्व विचार करेगा तो क्या होगा? पुराने मिथ्यात्व जो है ना उदय हो रहा था वो घटता हुआ अनुभव हो जाएगा। घटते घटते मंद होते होते इसका उदय मिट जाएगा कुछ काल के लिए। इसका उदय मिटेगा तो यहाँ मिथ्यात्व परिणाम नहीं होगा, यहाँ मिथ्यात्व परिणाम होगा नहीं तो यहाँ नया बंध नहीं होगा। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो हम कहेंगे उपशम संयुक्त हुआ। वो कैसे होता है उसके अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी तो हम प्रायोगिक लब्धि में है। हाँ, संयुक्त प्राप्त करने के पहले थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। हाँ देखो, उदय भी चल रहा है। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय आदि का बंध होता रहता है। अभी जो हमने प्रकृतियों के नाम पढ़े 46, उनका ही बंध रुक गया है अभी तक। मिथ्यात्व का भी बंध चलता रहेगा, अनंतानुबंधी का भी चलेगा, उदय भी चलेगा। प्रथम ऑप्शन समत्व के पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। जब पहला समय है समत्व प्राप्ति का, उस समय मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं है, जीव के परिणाम भी नहीं है और नया बंध भी नहीं है, तीनों रुक जाते हैं। जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है। क्या कहा? ये संवर के हमने दो भेद किए, भाव संवर और द्रव्य संवर। द्रव्य संवर तो हमने उसको कहा कि जो प्रकृतियों का बंध होता है वो रुक जाता है, और भाव संवर किसको कहना? शुद्धि की उत्पत्ति, जीव के परिणाम की बात ना, भाव यानी जीव के परिणाम। तो शुद्धि की उत्पत्ति यानी कौन सी शुद्धि? वितरागता की उत्पत्ति। अनंतानुबंधी कषाय चोकड़ी का भी अभाव होगा, मिथ्यात्व का भी अभाव का अर्थ है यहाँ अनुदय। जब हम द्रव्यान योग सीखते हैं तो अभाव अभाव कहते हैं, परंतु यहाँ सत्ता में कर्म पड़े हैं, उनका कुछ काल के लिए उदय मिटेगा, उसको यहाँ अभाव कहेंगे, अनुदय कहेंगे, अनुदय। तो कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त के पहले समय से उनका बंध और उदय दोनों मिट जाते। किसका? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का। जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है, तब कर्म में मिथ्यात्व आदि 16 और अनंतानुबंधी आदि 25, इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है। इसका अर्थ देखते हैं। शुद्धोपयोग रूप भाव संवर यानी वो शुद्धोपयोग में है, अपने शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हुआ है, तब हम कहेंगे भाव संवर हुआ। उसी समय से द्रव्य संवर यानी अनेक प्रकृतियों का बंध और उदय दोनों रुक गए हैं। हम एक बंध की बात करेंगे तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कितने ही प्रकृतियों का बंध होना रुक जाएगा। कौन सी? मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृति जो पहले गुण स्थान में बनती है, और अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियां जो पहले और दूसरे गुण स्थान में बनती है, दूसरे गुण स्थान के ऊपर नहीं बनती। इतने 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उसको कहते हैं द्रव्य संवर। इनके नाम देखने हैं आपको, ये 152 पृष्ठ है मेरे में,
149 देखिएगा।
गुजराती में 2 या 3 कम हो गए। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृति लिखी है, मिला क्या? 149 मिला सबको। कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, इसको हम विच्छित्ति कहेंगे। जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसे इतने प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। देखो हमने 148 प्रकृतियां देखी थी, याद है ना पहले, और उसमें से हमने बंधन संगात को 10 कम किए और स्पर्श रसगंध के 20 के बदले 4 बताए थे, यानी हमें 122 का हिसाब करना है। उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व के काल में तैयार होती है मिथ्यात्व में से, तो बंध योग्य प्रकृति 120 होती है। 120 में से तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक 2, ये 3 प्रकृतियां सम्यक दृष्टि को और मुनि को बंधेगी। रही 117 प्रकृति, मिथ्या दृष्टि के बंध योग्य 117 प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियों का बंध मिट गया। कितना बड़ा कार्य कर दिया ना उसने,
1/3 खत्म हो गया।
अब ये भी सोच लो, मनुष्य जो है सम्यक दृष्टि होता है तो 41 प्लस और 6 प्रकृतियां नहीं बनती है उसको, उसके तो 47 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। वो कौन सी देखेंगे अभी हम, यहाँ 41 की बात करेंगे पहले। देखो कौन कौन सी नहीं बंधेगी, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन। अभी एकेंद्रिय संबंधी देखो सब, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, नरकायु, ये 16 प्रकृतियों का बंध अब रुकेगा। और दूसरे गुणस्थान संबंधी जो है अनंतानुबंधी की 4, स्त्यान वृद्धि आदि तीन, ये क्या है स्त्यान वृद्धि, किसका नाम है? निद्रा का, हाँ, दर्शनावरण का। चार संस्थान, ये बीच वाले चार संस्थान, ये बीच वाले चार क्यों लिया? छठा
पहला तो
ऊपर लिया था पहले गुणस्थान में, छठा संस्थान और छठा सहनन, सहनन में भी यहां बीच वाले चार लिए। तिर्यंच संबंधी, तिर्यंच गति, गत्यानुपूर्वी, तिर्यंचायु, उद्योत लिए। अन्य तीन में दुर्भग दुस्वर अनादेय, और अन्य तीन में स्त्रीवेद, निज गोत्र वगैरह वगैरह, अप्रशस्त व्याग। इतनी प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा, उसको बंध विच्छित्ति कहेंगे। अभी हम प्रायोग्य लब्धि में देखते हैं, यहां मिथ्यात्व का बंध नहीं रुका है, आनंदानुबंधी का बंध नहीं रुका है, है ना, वो चल रहा है, परंतु अन्य कितने ही प्रकृतियों का बंध रुका है, जैसे आयु वगैरह। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द्रव्य संवर यह अपने आप होता है, कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता। हाँ देखो, हम पहले पृष्ठ पर आते हैं, पहले पहले 103 यानी आपके 101 होगा, हाँ क्या कहते हैं, देखो जहां हमने देखा है ना कि जीव जब भाव संवर करता है तब अपने आप द्रव्य संवर यानी कर्मों का बंध रुक जाता है। तो ये जो कर्म की अवस्थाएं हैं वो जीव उसे कर ही नहीं सकता, जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। भाई आपका पुरुषार्थ आ गया यहाँ पर, क्या है? पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वद्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है। क्यों ऐसा? देखो गुण की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी संपूर्ण सभी अवस्थाओं में रहता है, इसी परिभाषा में पर्याय को ढालना है, कौन ढालेगा? गुण की परिभाषा के बदले अभी पर्याय की परिभाषा करनी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, क्या कहा? जो पर्याय कौन सी कैसी होती है, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है और उसकी एक समय की अवस्था में होती है, उसको हम पर्याय कहेंगे, है ना? जैसे मति ज्ञान पर्याय कहाँ होगी? यहाँ होगी ना, सिर में। और सुख की पर्याय हृदय में होगी, क्यों? तो ज्ञान की पर्याय द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, एक समय के लिए होती है। इस तरह यहाँ पुरुषार्थ की पर्याय की बात चल रही है, द्रव्य के स्वद्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती, पर द्रव्य में तो होती ही नहीं। हरेक जीव का अपना पुरुषार्थ अपने में होगा, शरीर में और अन्य परद्रव्यों में नहीं होगा। इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं। हम तो लौकिक पुरुषार्थ तो पैसों में भी करते हैं और भी अन्य अन्यत्र करते, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही। यह बात ठीक तरह से समझ लो, इन पहली चार लब्धि में होने वाले शुभ और शुभतर यानी अधिकाधिक शुभ परिणाम द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। ये जो पुण्य प्रकृति होती है बनती है, और पाप प्रकृतियों का, कुछ पाप प्रकृतियों का बंध रुका है, ये मोक्ष मार्ग वाला संवर नहीं है। मोक्ष मार्ग तभी शुरू होगा जब मिथ्यात्व का बंध रुक जाएगा। दूसरी बात, प्रश्न पूछा ना, इतनी सारी प्रकृतियों का बंध रुका तो हम प्रायोगिक लब्धि में ही रहेंगे, तो क्या तुम प्रायोगिक लब्धि में ही रहना चाहते हो या सम्यक्त्व की प्राप्ति करना चाहते हो? इतने में संतुष्ट होकर कुछ पुण्य बांध कर उसका फल कितने काल तक भोगोगी? पुण्य और उसके फल की वांछा में तो मिथ्यात्व पनपता ही रहेगा, उसके बारे में कब सोचोगी? देखो लोगों को लगता है पुण्य करे हो, अच्छा अंदर से रुचि है पुण्य की, क्यों? उसके फल में तो खुश खुश हो जाते हैं, परंतु मिथ्यात्व के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और ये पुण्य की रुचि में तो मिथ्यात्व पनपता है, रुचि की बात चल रही, पुण्य के कारण मिथ्यात्व पनपता, ऐसा नहीं कहा? हाँ, नहीं तो आधा ही सुनकर भाग मत जाना। हाँ, पुण्य और पुण्य के फल की वांछा में तो मिथ्यात्व ही रहेगा, उसके बारे में कब सोचोगी? और एक बात, इन चारों लब्धि का प्रत्येक का काल तथा चारों का मिलकर भी काल एक अंतर्मूर्त होता है अधिक नहीं। अंतर्मूर्त के लिए ये प्रकृतियां बंधना रुकी है। यदि जीव तत्व विचार से छूटकर अन्य विचार में चला जाता है, हम ध्यान के लिए बैठते ना, क्या होता है, करना तो चाहते कुछ और अन्य अन्य विचार बीच बीच में आते हैं ना, तो तत्व विचार कहाँ रहे, अन्य विचार में खो गया। तो जैसे विचार हो गए वैसे उसके ये पुण्य पाप जो कुछ है वो बनता रहेगा।
तो
ये यथा योग्य अंतर्मूर्त, क्योंकि हमने देखा ना प्रायोग्य लब्धि में स्थिति बंधापसरण के कितने करोड़ों 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 बंधापसरण के अंतर्मूर्त हुए है, फिर भी ये पूरा मिलकर भी एक अंतर्मूर्त, चारों लब्धि मिलकर भी अंतर्मूर्त, करण लब्धि को मिलाओ तो भी अंतर्मूर्त, उपशम समित्व का काल इसमें मिलाओ तो भी अंतर्मूर्त। तो कितने छोटे काल में कितना क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई कहेगा? हम अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए इतने सालों से हमारी प्रायोगिक लब्धि चल रही है, तो ऐसा भी नहीं। ये जो पुस्तक लिखी ना, बहुत सारे अलग अलग गांव से भी फोन आए, इंदौर से आए और कहां कहां से, उन्होंने कहा हम तो ऐसा ही समझते थे कि हम चार लब्धि हमारी चल रही है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ये सभी लब्धियों का मिलकर भी काल एक अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होता। जिस भव में संगी पंचेन्द्रिय पना प्राप्त हुआ वह पूर्ण भव क्षोपम लब्धि नहीं है, वहां क्षोपम तो है परंतु क्षोपम लब्धि नहीं है, परंतु सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने योग्य प्रक्रिया जब जब होगी तब तब क्षयोपमादि लब्धि होगी, ये पांचों लब्धि तब होगी, और इसी प्रक्रिया द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होगी। योग्यता हुई इसलिए सम्यक तो होगा ही, ऐसा नहीं है। क्या कहा, प्रायोगिक लब्धि तक आया इसलिए सम्यक तो हुआ होगा ही, ऐसी बात नहीं है, परंतु जब सम्यक तो होता है तब उसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है। सम्यक दर्शन होने वाले को उसके पूर्व ये पांच लब्धि होती ही है, परंतु ये चार लब्धि हुई इसलिए सम्यक तो होगा, ऐसा नहीं। पांचवी करण लब्धि में जो प्रवेश करेगा उसका सम्यक तो नियम से होगा, यानी आत्मसन्मुख दशा है ना वो। अब हम बंधापसरण और बंध की विच्छित्ति का अर्थ मैंने आपको अभी बताया कि बंध विच्छित्ति कब कहलाते, जब समय दर्शन हो जाता है तब। और यहाँ क्या है, बंधापसरण है, विशिष्ट प्रकृतियों का बंध अंतर्मूर्त के लिए रुक गया है। ये हमने 16 और 25 प्रकृतियों की भी बात की थी। इसी को फिर यहाँ दोहराया है, अभी हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा। देखो इसमें कोई शंका है तो पूछ लेना, क्योंकि क्या है ये जो प्रायोगिक लब्धि का जो प्रकरण है वैसे थोड़ा हमारे लिए बहुत नया भी है और इसके हमने कभी शब्द भी नहीं सुने थे। आगे बढ़ेंगे अभी हम, आपको कुछ पूछना है इसके बारे में?
नहीं यार,
हाँ,
नहीं चला अभी तक,
पता नहीं चला, बात सही है, क्योंकि ये इतना सेचुरेट हो जाता है एक बात तो, और पहली बार सुनते हैं तो कुछ पता नहीं चला। आपकी क्या बात है, मैं मेरी बात बताऊ, ये पुस्तक लिखी प्रंचलब्धि, उसके पहले गोमरसार हमने चार बार पढ़ा था, प्रकृति बंधा शब्द का अर्थ नहीं मालूम होता था, वो प्रकृति के बंध का अपसरण होना वगैरह वगैरह। जब लिखना प्रारंभ किया और तब देखो कहीं भी इसके दो ढाई पेज से ज्यादा मैटर कहीं भी नहीं है, और उस पर पुस्तक लिखी 200 पेजेस की तो उसका जब अधिकाधिक अर्थ खुलासा बारंबार उसमें माथा मारते गए तब उसका अर्थ कुछ कुछ भाषित होने लगा। इसको पढ़ाए भी, जब लिखने के पूर्व जब नोट्स निकाले थे तो नोट्स निकालकर मैंने 5-6 शिविरों में इसको सिखाया था, 20-20 दिन तक सिखाया था, तो इसके अर्थ और खुलते गए। और फिर इसको इतना तो प्रस्तुत किया, आपने पहली बार सुना इतना ही बहुत हुआ। हाँ नहीं, मैं सच कहूंगी, हाँ
वो भी इतने शांति,
इतने पेशेंस से आप सुन रहे हो, और ये नया विषय है।
इनका कहना ऐसा है कि कहीं पर भी पांच लब्धि के बारे में दो तीन चार पेज के ऊपर लिखा नहीं है।
यानी इसमें क्या होता है, स्थिति बंध घटता है, अनेक प्रकृतियों का बंध कुछ काल के लिए रुका है। हमें तो इतना ही लेना है, वो उसके नाम भूल जाओ, आप स्थान क्या होता है उसको भूल जाओ, इतनी इतनी प्रकृतियों का बंध अभी नहीं होगा। कौन सी है वे प्रकृति?
कुछ टेम्पररी है ना,
टेम्पररी है, पर जो अभी सम्यक तो प्राप्त करेगा आगे जाकर, उसके लिए इसमें से कितनी प्रकृतियां परमानेंट है।
लेकिन वहां से भी वो पीछे एक तरफ तो आ सकता
है, आ सकता है,
फिर तो फिर एक
फिर बंधेगी, परंतु वो तो अभी एक बार सम्यक हुआ ना, उसका रास्ता खुल गया अभी, और जरूरी नहीं है उसको नीचे आने की। उसका सम्यक तो बना रहेगा, तो ये प्रकृतियां उसके बंधेगी नहीं, और नॉट ओनली बंध, कितनी प्रकृतियों का उदय भी रुक जाएगा। अभी वो एक इंद्रिय में नहीं जाएगा, द्विंद्रिय में नहीं जाएगा, तीनद्रिय में नहीं जाएगा, सम्यक तो बना रहेगा, तो हो मिथ्यात्व में जाएगा, तो सभी सभी खुले हैं रास्ते फिर उसके। आप कहेंगे फिर सम्यक तो क्यों प्राप्त करना, एक बार किया है ना, तो अभी बहुत अगर नीचे भी आएगा तो ज्यादा नहीं भटकेगा। हाँ, अभी उसका संसार लिमिटेड हो गया, मर्यादित हो गया है, और कोई गिरता है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं ना, हमें क्या लेना देना, हम थोड़े गिरने वाले हैं। कौन सा प्रायोगिक लब्धि अंतर्मूर्त तक है, सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त तक है, ऐसा नहीं कहा। कौन सा औपशमिक सम्यक तो है, वो अंतर्मूर्त तक रहेगा, और उसके बाद वो क्षोभम सम्यक तो हो जाएगा अपने आप, उसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है। उसका सारा ये जो पुरुषार्थ है, क्यों जो अंतर्मुखता है, वो जो सारे करण लब्धि तक गया, वो एंटर हुआ वो तो, और वो भी कहने के लिए उसको पुरुषार्थ करता है या ऐसा रुकना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं होता। ये सहज प्रक्रिया होती है, और उसमें से भी वो सहज रूप से वो वेदक सम्यक दृष्टि होता है, उसका तो लंबा काल है, हो सकता है उसी भूमि में मोक्ष भी चला जाए। वेदक सम्यक्तों का भी अधिक से अधिक काल 66 सागर का है, फिर अंतर्मूर्त के लिए नीचे आएगा, फिर और प्राप्त करेगा, उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। सम्यक्तों में रहेगा वो, बना रहना चाहिए ना, वो हमारी इच्छा से नहीं होता,
बना रहना।
हाँ, जब सम्यक तो बना रहेगा तो मिथ्यात्व में आने का सवाल ही नहीं है। हो सकता है दो चार, जैसे अभी महावीर को कब सम्यक हुआ, सिंह के पर्याय में, उसके बाद 10 भवन तक उसका देव और मनुष्य, देव और मनुष्य चला ना, वो तो कुछ नहीं है, उससे भी लंबा काल उसका सम्यक तो किसी जीव का हो सकता, रह सकता है, तो उस काल में मोक्ष प्राप्ति हो जाती। सम्यक तो बना रहा, हाँ, बिल्कुल अनुभव तो होता ही रहता है ना, सम्यक तो है तो बीच बीच में यानी उसको शुद्धोपयोग भी होता रहता है, और फिर उसमें जो सम्यक तो प्राप्त किया, फिर वेदक हुआ, उसमें से क्षायिक हुआ, क्षायिक के बाद इतने बहुत ही नहीं है। देखो देखो, क्षायिक सम्यक दर्शन होता है किसी जीव को, क्षायिक का अर्थ क्या देखा, अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, या तो उसी भव में जीव मोक्ष जाता है, या जैसे अभी श्रेणिक राजा ने सम्यक तो होने के पूर्व नरकायु बांधी थी, अब नरक में गया है, वहां से मनुष्य होकर मोक्ष जाएंगे ही, उन्होंने नरकायु बांधी थी, किसी ने देवायु बांधी हो तो एक देवायु करके मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा ही। अब क्षायिक होने के पहले यानी सम्यक तो के पहले किसी ने तिर्यंचायु मनुष्यायु बांधी हो तो वो क्षायिक के साथ भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि के बाद देव में जाएगा, और देव में से आके मनुष्य होकर मोक्ष जाएगा, उससे आगे उसके एक्स्ट्रा भव नहीं होते क्षायिक होने के बाद, रूल है वो। वेदक समय तो के साथ कुछ मनुष्य देव, मनुष्य देव ऐसे भव करेंगे, क्षायिक हो जाएगा और फिर मोक्ष चला जाएगा। क्षायिक समय दृष्टि भी असंख्यात है, किसमें, पहले नरक में असंख्यात क्षायिक समय दृष्टि नारकी जीव है, तिर्यंच भोग भूमि के क्षायिक समय दृष्टि असंख्यात है, मनुष्य संख्यात है, और देवों में असंख्यात समय दृष्टि है, क्षायिक समय दृष्टि, अन्य तो है ही है, वेदक और औपशमिक समय दृष्टि तो असंख्यात असंख्यात है ही, तीन गतियों में मनुष्य संख्यात ही होते इसलिए उसके संख्यात कहा, तो इतना असंख्यात है। क्षायिक समय दृष्टि, क्षायिक समय दृष्टि का अर्थ क्या है, अभी अगले भाव में मोक्ष जाने वाले है। हाँ, असंख्यात का, असंख्यात का अगर आपको एहसास हो जाए ना, ये संख्या मान लिया है ना आपने अभी, सुनो। हाँ,
वो कैंप में लिया था।
हाँ, आपने लिया
जोपर एस टू जोपर।
हाँ हाँ, इसमें लिखा है देखो, अभी कुछ अधिकरण शुरू होने के पूर्व पहले थोड़ी प्राथमिक बातें लेते हैं, फिर एक 10-15 मिनट और लेंगे हम, और देखे देखो ये जो करण लब्धि का जो प्रकरण है उसमें देखते हैं। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के पहले होने वाली पांच लब्धि का स्वरूप हम देख रहे हैं। उनमें से हमने चार लब्धि संबंधी चर्चा की है। हमने यह भी देखा कि भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को प्रायोगिक लब्धि तक चारों ही लब्धि हो सकती है, परंतु पांचवी करण लब्धि तो मात्र भव्य जीवों के ही होती है, अभव्य जीव तो करण लब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते, उनमें वैसी योग्यता ही नहीं। क्या भव्य जीव सभी प्रायोगिक लब्धि तक आते तो करण लब्धि प्राप्त करते ही है क्या? नहीं, क्योंकि तत्व विचार करते करते विचार छूट गए, अन्य विचार में चढ़ गए तो प्रायोगिक लब्धि समाप्त हो गई उनकी। भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। उन जीवों में पात्रता होने पर भी, पात्रता तो है, उपादानगत योग्यता अनुसार, ये पांचों समवाय लगाए यहाँ पर, पुरुषार्थानुसार, भवितव्यतानुसार और काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर्मूर्त में सम्यक्त प्राप्त करने वाले हो वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनके करण लब्धि होगी। वहां निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से स्वयमेव होगा। क्या कहते हैं, पांच समवायों की यहाँ चर्चा की है। कोई भी कार्य यानी पर्याय होता है, होती है किसी भी द्रव्य की, उसमें सभी कारण इकट्ठे आ मिलते हैं, क्योंकि वो पर्याय होने की योग्यता द्रव्य में पड़ी है, तो द्रव्य अपने स्वयं के बल से वो पर्याय रूप परिणमेगा, वो उसका पुरुषार्थ है। जिस समय में परिणमन होना है उसी समय होगा, वो काल लब्धि है। जिस समय में जो पर्याय होनी है वही उसकी होनहार है, और उस समय उचित निमित्त वहां उसकी अपनी योग्यता से हाजिर होगा ही। तो यहाँ निमित्त में कर्म को लिया है। देखो फिर उपादानगत योग्यता स्वभाव हुआ नहीं, पुरुषार्थ, भवितव्य, काल लब्धि, इस सब के अनुसार अभी जो अंतर्मूर्त के पश्चात जिसको सम्यक्त होना है वो करण लब्धि में प्रवेश करेगा। करण लब्धि में जो कोई कर्म की अवस्थाएं होने वाली है वो उसके अपने योग्यता से होगी, और जिस समय सम्यक दर्शन होना है उसी समय वहां कर्म में मिथ्यात्व का जो अब तक उदय चल रहा था वो उदय मिट जाएगा, उसका उपशम होगा। वो कैसे होता है उसको देखेंगे हम। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन करते हैं, तब पांचों ही कारण इक्वली होते हैं ही। जब कथन करना है तो किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जा सकता है। कथन में मुख्य गौण की पद्धति है, जिसका कथन करेंगे बाकी गौण रूप से वहां विद्यमान होते ही है। तो पांच में से किसी एक को मुख्य किया है उसका अर्थ है, ऐसा नहीं कि अन्य चार नहीं होते, उसका अर्थ है हम उसकी मुख्यता से अभी बात कर रहे हैं। तब कहा जाता है जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक तो प्रकट होगा। शास्त्र में ऐसा कथन भी है, लब्धि सार में भी कथन है कि जब काल लब्धि होती है तब उसको सम्यक तो हो जाता है। तो हम उसका अर्थ क्या करते हैं, भगवान ने हमारा सम्यक तो होना देखा है ना, कितने बजकर कितने मिनट में, तो चलो अभी तब तक क्या करना, एक मूवी देखकर आते हैं। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा किया हो यानी एक कारण की अपेक्षा किया हो तो भी वहाँ पांचों ही समवाय का सुमेल होता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए आपने पूछा था ना लता बेन, ये सभी समय होते तो पुरुषार्थ को क्यों बताया जाता है, इतना इम्पोर्टेंस उसको क्यों, उपदेश किसका देंगे हम, आपकी काल लब्धि लेकर आओ कहेंगे क्या, आपका होनहार लेके आओ कहेंगे, अरे स्वभाव तो पड़ा है उसको क्या लाना देना। तो सामने वाले जीव को उपदेश देखो चरणानुयोग हो या अन्य जो है या प्रेरणा दी जाती है तो उपदेश की भाषा होती है, उपदेश की भाषा में करो ऐसा कहेंगे तो उसमें कर नहीं सकता, होने वाला है तब होता है, वो बराबर है, वो द्रव्यानुयोग के सिद्धांत है। उपदेश किसका होगा, करो करो की भाषा में उपदेश होगा, तो किसकी प्रेरणा या किसका उपदेश दिया जाएगा, पुरुषार्थ। तो कहते हैं उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है। शास्त्र में कहीं काल लब्धि की मुख्यता से कथन होता है, अब यहां उपदेश देना है सामने वाले जीव को तो किसका करेंगे, तो पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने लिखा है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अब देखना उसमें है, देखो किसका किसका पुरुषार्थ करना है, मोक्ष का जो पुरुषार्थ करता है उसको अवश्य उसकी प्राप्ति होती है। तो मोक्ष का पुरुषार्थ अभी करना है कि अभी वर्तमान में सम्यक्त्व का पुरुषार्थ करना है, भाई मोक्ष तो अभी होता नहीं ना, कौन सा पुरुषार्थ करना है,
मोक्ष का।
हाँ मोक्ष का ही करना है, बहुत अच्छा। देखो यहाँ सम्यक्त्व का पुरुषार्थ न कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा है, तत्व निर्णय करके स्व और पर का भेद विज्ञान करके अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को यानी अपने आत्मा को निज रूप से जानते रहना यही पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ है बेन, अपने आत्मा को जानते रहना। तो कैसे जानना, उपयोग को अंदर ले जाना खींचकर, तो उसके पहले आवश्यक कंडीशन क्या है, तत्व निर्णय की। तत्व निर्णय के बिना हम केवल ध्यान के नाम पर बैठते हैं और मैं शुद्ध हूं बुद्ध हूं कहते रहते हैं तो उसके द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। कोशिश तो हम उसी की करते हैं परंतु हमें तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक बात है। तत्व निर्णय में हमने सभी बातें देखी है, स्व कौन है पर कौन है, मोक्ष मार्ग पूरा चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक की दशा कैसी कैसी होती है, उसमें सभी कोई आए चौथे पांचवें गुणस्थान का क्या स्वरूप है, मुनियों का क्या स्वरूप है, श्रेणी का क्या स्वरूप है, अरिहंत का क्या है, भगवान का यानी सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, वो पूरा उसमें आ जाएगा। स्वर पर क्या है, हे यज्ञ उपादेय क्या है, कैसे है, कल उसकी चर्चा बहुत हुई थी यहाँ पर। तो ये सारों का निर्णय पहले होगा और निर्णय के बाद आत्मा की अत्यंत महानता भाषित होती है, तो वहां भी वही पुरुषार्थ होता है, निर्णय करना यही पुरुषार्थ। फिर स्वसन्मुक्ता के काल में शुद्ध उपयोग की अवस्था में आत्मा का अनुभव होता है, तो यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक्त्व प्राप्त होता है। अब सम्यक्त्व तो प्राप्त हुआ, ऊपर के गुणस्थान कैसे प्राप्त हो गए, तो कहते इसी पुरुषार्थ द्वारा हो गए। केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसी पुरुषार्थ द्वारा, यानी ऐसा कहे भेद विज्ञान के द्वारा ही सम्यक तो प्राप्त होगा, भेद विज्ञान करते करते ही ऊपर का गुणस्थान प्राप्त होगा और भेद विज्ञान करते करते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्राप्त होता है, यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। कितनी विधि देखी हमने अभी तक, पहले में पहले देशना मिली उसको, उसका श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण यानी परीक्षा द्वारा निर्णय तक पहुंचा और तत्व विचार करते रहा, तत्व विचार में मग्न होकर तद्रूप होकर हो गया वो, और निर्णय जब होता है उसको सहज रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष मार्ग की यही विधि है। उसके बाद क्या करना, भेद विज्ञान करते रहना, तो ही उसके ऊपर के गुणस्थान और केवल ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक्त्व जब होने वाला है, जाना है, तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों देते हो? लोग पूछते हैं ना, भगवान ने देखा है तो उपदेश क्यों कर रहे हो? अथवा केवली भगवान ने हमारी भविष्य की पर्याय जैसी होने वाली है वैसी जानी है, इसलिए वे उसी प्रकार होगी ही, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, हम तो पराधीन हो गए, ऐसे भी कहने वाले होते। ये सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा होगा। हम गलत पुरुषार्थ करेंगे तो नरक में जाएंगे। अरे पर आप गलत पुरुषार्थ करके नरक में जाने वाले हो, ये केवली भगवान ने एक समय में जाना है, उसी को तो सर्वज्ञ कहते हैं, नहीं तो उसको केवली कहेगा कौन? केवली भगवान किसको कहेंगे? वो एक समय की ज्ञान की पर्याय में विश्व के समस्त द्रव्यों की, समस्त गुणों की, तीन काल की पर्याय उनके एक समय में युगपत जानने में आती है। तो उन्होंने जाना, इसलिए हम पराधीन नहीं हुए। प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने पुरुषार्थ से उस पर्याय रूप परिणमन करने वाला है, उसको उन्होंने इन एडवांस जान लिया है। वो एडवांस में जाना है वो उनकी ज्ञान की योग्यता है, और हम परिणमन करने वाले वो अपनी योग्यता से। उन्होंने जाना है, हम पराधीन क्यों हो गए? ये आपके वो हवामान का आता है ना, कल का कितना टेम्परेचर होने वाला है भाई? रमेश भाई कुछ कह रहे थे, हाँ 102। तो वो एटमोस्फियर पराधीन हो गया आपने जान लिया तो। क्यों? सूरज कब उगने वाला है, कल कौन सी तिथि है, सब कुछ निश्चित। आप शुद्ध ज्ञानी होकर भी जान रहे हो तो क्या बाकी सारी चीजें पराधीन हो गई? डॉक्टर ने आपको बता दिया है आपकी ऐसे ऐसी बीमारी, 8 दिन के अंदर ये ठीक हो गया, आप नॉर्मल हो जाओगे, तो पराधीन हो गया शरीर क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया। क्यों भैया? विचार करें ना, हम श्रुत ज्ञानी भी भविष्य की बातें जान सकते हैं अनुमान द्वारा या जो कोई अन्य प्रकार से उसको जान सकते हैं, तो केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, वे तो सब कुछ जानते हैं इन एडवांस, और पहले की भी बातें, वर्तमान की भी और भविष्य की भी, एज इफ वर्तमानवत जानते हैं। युगपत, युगपत यानी एट ए टाइम, कैसे आपके यहाँ कितने वो रिमोट कंट्रोल है ना, टीवी पर कितने चैनल है, इतने मुझे मालूम नहीं यार, 500 है, अरे बाप रे बाप। हाँ तो एट ए टाइम कितने लगते हैं? एक ही लगता है, ज्यादा नहीं लगते? दो लग सकते हैं। अच्छा अच्छा, दो लग सकते हैं, और है कितने? 500। अच्छा, आपने सीरियल चालू की, आधे घंटे की है, कितने समय में देखते हो? आधे घंटा लगता है, 5 मिनट में नहीं देख पाते, तो आधे घंटे की सीरियल आधे घंटे में देखते हो, और एट ए टाइम एक ही चैनल देखते हो। केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या चल रहा है? सभी द्रव्यों के सभी चैनल, द्रव्यों के चैनल कह रही हूँ मैं, टीवी के चैनल की बात नहीं, वो तो उन्होंने टीवी का जब भी खोज नहीं हुई थी तभी से जान लिया था, और उनके लिए आधा घंटा नहीं लगता, अनादि से अनंत काल तक सभी पर्याय जानने के लिए एक समय लगता है, ख्याल है ना? इसको कहते युगपत एट अ टाइम। कैसा अच्छा होगा ना, 500 चैनल एक साथ आपको दिखाई दे तो
जल्दी केवली हो जाओ।
देखने कितनी आकुलता है, जितने चैनल है ना उतनी आकुलता ज्यादा है आपको, नहीं समझा? पहले एक ही चैनल आता था, जो है वो देख लेते या तो मिटा देते थे, अब सामने बैठकर क्या करते है? देखो हमारे पास तो केबल नहीं है, आप क्या करते बताओ? यहाँ एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई, वहां ऐसे शुरू हो गया, इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है? ये गेय लुब्ध है प्राणी, जानना चाहता है, यही आकुलता है। केवली का आकुलता क्यों नहीं, वो सब कुछ एक समय में जान रहे, अभी क्या होगा, क्या चल रहा होगा, कुछ नहीं। हम क्यों ये न्यूज के खबरों के पीछे क्यों पागल है इतने?
नमोकार वाली नमोकार वाली धपते धप धप धप
वो कहते हैं नौकर मतलब ये गनते ना ऐसे ऐसे वैसे चैनल टप 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 करते रहते देखो अभी थोड़ा हम लेके रुकते हैं अभी तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा हम पराधीन हो गए आदि प्रश्न तथा मान्यताएं भूल भरी है यह बात तुम्हारे ख्याल में आ गई होगी
सब लिख भेजेगा मोक्ष मार्ग
हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वो पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग जो है आप पढ़ना उसको मैं पेज नंबर बता दूंगी आपको 309 पृष्ठ पर है हाँ हिंदी में यहाँ प्रश्न भी पूछते हैं वहां पर यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय उपाय की बात है काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है पांच समय में से मोक्ष का उपाय कैसे बन सकता है काल लब्धि आने पर बनेगा भवितव्यता अनुसार बनेगा कि कर्मों का उपशम होने पर बनेगा या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है सो कहो स्वयं पंडित जी ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं तो यदि वो काल लब्धि और होनहार से होता है तो हमें उपदेश क्यों देते हो ऐसा बोलते हैं और पुरुषार्थ से होता है तो उपदेश तो सभी सुनते हैं तो कोई तो उपाय करता है कोई नहीं करता उसका कारण बताओ ऐसा कहते हैं क्योंकि हमने उपदेश के अनुसार परिणाम थोड़ा ही सब करते हैं वो उसका समाधान में ऐसे बोले कि जब कार्य होता है तो अनेक कारण स्वयमेव मिलते हैं जिस प्रकार का पुरुषार्थ होता है उस प्रकार का कार्य भी वहां सहज बन जाता है अब हम यहां आगे बढ़ते हैं आपका 105 नंबर होगा शायद तुमने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया था कि भव्य जीवों के समान अभव्य जीवों के भी प्रायोग्य लब्धि हो सकती है उनके कर्मों में भी स्थिति कांडक घात अभी हमने देखी भी नहीं ये बातें अनुभाग कांडक घात स्थिति बंधापसरण प्रकृति बंधापसरण आदि बातें होती है बेटियों शुभ भाव तो भव्य अभव्य दोनों को होते हैं उनके निमित्त से प्रशस्त यानी शुभ कर्मों का पुण्य कर्मों का बंध होता है परंतु भव्य जीव भी यदि प्रायोग्य लब्धि तक आकर स्वभाव सन्मुखता का तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन का यानी उसके अनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे अर्थात यदि उन्हें करण लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी जिस करण लब्धि का नाम तुमने अनेक बार सुना है और जिसके होने पर नियम से सम्यक्त्व होता ही है और जिसके नहीं होने पर सम्यक्त्व हो ही नहीं सकता उसका स्वरूप जानने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो यह बात मैं जानती हूँ अब उसकी चर्चा करते हैं अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे अभी क्यों है सैचुरेट होता है ना बहुत अंदर घुसता नहीं कुछ बोलो 2400 भगवान की जय